दिन भर तारीख 29 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। जेटली ने पेश किया 2016 का आम बजट।
लहर लहर तूफान मिले फिर भी दिखाया है हमने, और फिर ये दिखा देंगे सबको किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें।
नौकरी पेशा लोगों के आयकर ढांचे में कोई बदलाव नहीं, सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण कर। बजट में सरकार का फोकस रहा ग्रामीण क्षेत्रों पर, करेंगे विश्लेषण।
जानते हुए कि दो इलेक्शन जो हारे हैं उसके बाद उनको मैसेज ये हारा है कि भाई एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये बजट का आपने देखा सारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए रहे।
बताएंगे कि जेटली ने किसको किया खुश, किसको नाराज किया। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वर्ष 2016-2017 का आम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी आई है। वित्त मंत्री ने बजट में 5 लाख रुपए की आमदनी पर कर छूट को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा इस बजट में किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सिगरेट, गाड़ियां, सोने और हीरे के गहनों के दाम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की है, वहीं विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर फैसला 2 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा है। कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि उसके पास सबूत हैं कि कन्हैया कुमार और अन्य छात्रों ने जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए थे। कन्हैया कुमार ने अदालत में इस आरोप से इनकार किया और कहा कि 9 फरवरी के कार्यक्रम में 3 नकाबपोश लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में शनिवार से लागू हुए युद्ध विराम के बाद हमलों में कमी आई है, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। वहीं सीरिया में दोनों पक्ष युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। फ्रांस ने भी नरमपंथी विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में कथित हवाई हमलों पर चिंता जताई है। जिनेवा में फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क एरो ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली टास्क फोर्स की बैठक में युद्ध विराम की समीक्षा की अपील की।
Nous avons d'ailleurs reçu des indications selon lesquelles les attaques, y compris aériennes, se poursuivent.
हमें संकेत मिले हैं कि नरमपंथी विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले किए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करना बाकी है। इसके लिए फ्रांस युद्ध विराम की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने की मांग करता है। ये थे जियां मार्क एरो के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस और मैसेडोनिया की सीमा पर फंसे सैकड़ों प्रवासियों ने सीमा पर लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया है। मैसेडोनिया की पुलिस ने प्रवासियों की उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। सीरिया और इराक से आए करीब 500 से ज्यादा प्रवासी कई दिनों से ग्रीस के इदोमेनी क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं। मैसेडोनिया ने कल 300 प्रवासियों के लिए सीमा खोली थी। मैसेडोनिया समेत कई बाल्कन देशों ने प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर नियंत्रण बढ़ा दिया है, जिसकी ग्रीस ने आलोचना की है। पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर की हत्या के दोषी मुमताज कादरी को फांसी दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर रहे सलमान तासिर पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के विरोधी थे। उनके अंगरक्षक मुमताज कादरी ने 5 साल पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। भारत की जनता की निगाहें आज इस बात पर थी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली देश के आम बजट में क्या सौगात देने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए सरकार कितना और कहां से धन मुहैया कराने वाली है, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है, और क्या आम आदमी, नौकरी पेशा लोगों को कर में रियायत मिलेगी। अरुण जेटली ने जब बजट के प्रावधानों को संसद में पढ़ना शुरू किया तो इस सवाल का जवाब मिलने लगा कि सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है और खेती के लिए कुछ नई सुविधाएं दी हैं। कर की सीमा नौकरी पेशा के लिए अपरिवर्तित रहेगी। इसके अलावा अरुण जेटली ने तमाम प्रावधानों के बारे में बताया। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने अरुण जेटली के बजट भाषण को बड़े गौर से सुना है, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
मैडम स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट for the year 2016-17.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे बजट में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 19.78 लाख करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है, जो चालू वित्त वर्ष से 15% अधिक है। जहां 5.5 लाख करोड़ रुपए योजना व्यय के तहत रखे गए हैं, वहीं 14.28 लाख करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के तहत रखने का प्रावधान किया गया है। हालांकि लोकसभा में अरुण जेटली ने बजट का भाषण अंग्रेजी में दिया, मगर बजट पेश करते हुए वो विपक्ष पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए भी नजर आए।
कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें।
हालांकि राहत तो मामूली ही थी, मगर उन करदाताओं को जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना से कम है, उनकी टैक्स सीलिंग को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है।
रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर, मेजर्स टू बूस्ट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थ्री इंसेंटिवाइजिंग।
जेटली कह रहे थे कि छोटे करदाताओं को राहत देने के साथ साथ विकास, रोजगार, मेक इन इंडिया और लोगों को सुलभ दरों पर मकान मुहैया कराना ही इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। उनका कहना था कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी सरकार ने विकास दर को बनाए रखा।
एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड एन ऑब्स्ट्रक्टिव पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, मैडम हमने आसमानी और सुल्तानी दोनों परिबलों से ने परेशान किया है।
इस बजट के मुख्य केंद्र में किसान, ग्रामीण इलाके और महिलाएं ज्यादा नजर आईं। आने वाले वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जबकि 2.80 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण पंचायतों को दिए जाने का प्रावधान है। जेटली ने कहा कि 2018 तक देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य बजट में रखा गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट को किसानों, महिलाओं और गांव का बजट बताया।
गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई है। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से ग्रामीण भारत को एक नई ऊर्जा मिलेगी।
साथ ही साथ 2018 तक हर गांव में बिजली की सुविधा देने की व्यवस्था की इस बजट में स्पष्ट रूप से है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी, गति मिलेगी और सामान्य मानवीय के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव।
जहां ग्रामीण इलाकों में रहने वाले इस बजट से खुश हैं, वहीं मध्यम वर्ग में इसको लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी वालों पर 12% की बजाय 15% का सरचार्ज लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात है कि पहली बार मकान खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी, जबकि नए कर्मचारियों का 8.33% पीएफ 3 साल तक सरकार देगी और एचआरए में टैक्स छूट की लिमिट को 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि आपने सुना कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या क्या प्रावधान किए हैं इस बजट के लिए। 1 अप्रैल के बाद आपको सिगरेट, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा 10 लाख रुपए से भी अधिक की कारें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री के बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा, सुनिए स्वाति बख्शी और मुकेश शर्मा से।
क्या महंगा हुआ?
सर्विस टैक्स 14.5% से 15% होने से सभी सेवाएं महंगी।
फोन बिल, रेल, ई टिकट,
रेस्टोरेंट में खाना,
जिम जाना, ब्यूटी पार्लर जाना,
मूवी टिकट, हवाई सफर, केबल बिल,
बीमा पॉलिसी,
सभी तरह की कारें।
डीजल गाड़ियों पर 2.5% टैक्स बढ़ा।
एसयूवी में 4% टैक्स बढ़ा।
ब्रांडेड कपड़े,
रेडीमेड कपड़े,
सिगरेट,
बीड़ी को छोड़कर सभी तंबाकू उत्पाद,
गोल्ड ज्वेलरी,
हीरे और कीमती पत्थर,
कोयला।
क्या हुआ सस्ता?
विकलांगों के उपकरण,
60 वर्ग मीटर तक के छोटे घर,
पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50,000 रुपए की छूट, मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
और डायलिसिस उपकरण।
क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ? कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था कि ये बजट उनकी परीक्षा है। अब सवाल यह है कि इस परीक्षा में वो पास हुए या फेल, आम जनता की राय सुनते हैं। बिहार की राजधानी पटना में लोगों की राय जानने जा पहुंचे हमारे सहयोगी नीरज सहाय।
देश के लेवल पे भी देखा जाए तो इस बजट में सिर्फ वही छलावा नजर आता है। किसानों को 5 साल के बाद वो दोगुनी आमदनी कर देंगे, आमदनी कैसे उनकी दोगुनी होगी इस पर कोई बात नहीं है। सर्विस टैक्स लगातार बढ़ रहा है जिसकी महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो आप नरेंद्र मोदी जी लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की सेवाएं महंगी हो रही हैं, एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो रहा है, ई टिकट रेलवे की ई टिकट महंगा हो रहा है। तो एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं को आप महंगा कर रहे हो। कुल मिला के इस बजट में कुछ नहीं है।
इस बार आम बजट में एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे फंड एलोकेट किए गए हैं। हमारे देश में आईटी सेक्टर और जो कैपिटल मार्केट है वो कमज़ोर है। इस बजट में कैपिटल मार्केट और आईटी सेक्टर में फोकस किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ में, अगर पहले कोई भी कर्मचारी 2016 में अगर वो सरकारी नौकरी मिल रहा है तो उसका 3 साल तक कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट ही करेगी। ये बजट सेटिस्फैक्ट्री रहा।
जनता को कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते हैं हम किसानों को मदद करेंगे। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ वो किसानों को क्या मदद करना चाह रहे हैं। बिहार में बहुत ही बुरी स्थिति है, उसको कैसे वो ठीक करेंगे ये तो बताएं।
देखिए, देश को विकास की ओर ले जाने वाला यह बजट है। और जहाँ गांव के गरीब महिलाएं जो प्रतिदिन धुआं लेती थीं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता था, उन्हें मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का यह बजट में प्रावधान है। छात्र लोग आज के समय में कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर जैसे तकनीकी चीज़ों के दाम घटाए गए हैं।
ये थी बिहार की राजधानी पटना में आम लोगों की आवाज़। श्रीनगर से माजिद जहांगीर ने आम जनता की राय जानी।
जो भी अभी तक हमने देखा उसका टोटल हम बहुत मायूस हुए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं, हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री भी, हमारी जो रियासत है ये टूरिज्म हॉर्टिकल्चर इसी पे चलती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बिजनेस तबका है, जो यहाँ के दुकानदार लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही। हमें मायूसी हुई है, ये बजट हमारे लिए एक आम आदमी के लिए या रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कहीं अच्छी चीज़ नहीं है।
हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें यहाँ किसको फ़ायदा मिलता है, हमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं है इससे। हम सुने बजट क्या है,
ये जो बजट पेश किया है कि ये जो गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी सुनता ही नहीं, क्योंकि उनको फ़ायदा किसी रंग में पहुँचना ही नहीं है, इसलिए उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बोलता है ये जो बजट होते हैं ये सब इंडस्ट्री आदमी के लिए, बड़े बड़े आदमी के लिए होते हैं, उनके लिए जो इनके पास इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनके लिए माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट उनका फ़ायदा होता है।
ये तो आम आदमी की सोच है। राजनीतिक दल जेटली के इस बजट को कैसे देख रहे हैं, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं समेटी हैं अमर शर्मा ने।
अरुण जेटली ने घोषणा की कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक निजी टीवी चैनल पर कहा कि नरेगा पर सबसे ज्यादा पैसा आवंटित करने की वजह आखिर क्या है।
मनरेगा को सिरे से खारिज करने वाले जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी, और इसके झंडा बरदार थे स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है और मैं इसको बचा के रखूंगा, लेकिन मैं इसके लिए बचा के रखूंगा क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करना है। आज 38,500 करोड़ का वो बजट एलोकेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कह रहे हैं कि एसेट क्रिएशन से लिंक नहीं था और फला और ढीका, ये सब बकवास है। नरेगा की स्थापना ही इसलिए होती है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों को रोजगार मिले।
राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने तो सरकार के इस दावे को ही खारिज कर दिया कि नरेगा के लिए इस बार सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है।
ये कहना कि मनरेगा में आज तक का सबसे अधिक बजट दिया गया है ये झूठ है। सन 1911-12 में दिया जा चुका है, आज से 6 साल पहले का 39,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये कहना कि ये कुल खर्च 36,000 करोड़ रुपया हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा इसलिए दिखता है कि पिछले साल इन्होंने ही बजट काट दिया था। तो आप ही एक साल काटें, दूसरे साल वापस उसी स्तर पे ले आएं और तालियां बजवाएं और कहें कमाल कर दिया आप।
जेडीयू के प्रवक्ता पवन वर्मा का कहना है कि सरकार ने बजट को कृषि को समर्पित बताया, लेकिन कृषि से ज्यादा बुलेट ट्रेन पर खर्च करने की योजना बनाई है।
कृषि में आप 17,000 करोड़ हर साल दे रहे हैं, 5 साल में 86,000 करोड़ होंगे, बुलेट ट्रेन में आप 1,00,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकताएं कहाँ है। नेशनल हाईवे पे आप 85,000 करोड़ खर्चा करेंगे और कृषि पर आपने टोटल बजट 35,000 दिया है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा दिल्ली और बिहार में हार गई, इसलिए वो किसान की बात कर रही है। राघव ने सरकार पर बजट में आंकड़ेबाजी करने का आरोप लगाया।
एकदम खोखला बजट ये निकला। ये कहते हैं कि हम रूरल इनकम को दोगुना कर देंगे। दोगुना कैसे कर देंगे इसका कोई रोड मैप नहीं दिया, और यदि मान भी लेते हैं कि डबल हो जाएगा तो इसका ये अर्थ निकलता है कि हर साल लगभग 15% इंक्रीज होना चाहिए इनकम में, रूरल इनकम में। तो क्या हम ये मान लें कि इस साल रूरल इनकम में 15% इंक्रीज होगी?
जनता दल प्रमुख लालू यादव ने तो इस बजट को जनता के साथ धोखा बताया है और कहा कि काले धन के जुमले की तरह ही सरकार 2022 में जनता की आमदनी दोगुना करने का सिर्फ सपना दिखा रही है।
बड़ा भारी धोखा हुआ देश की जनता को, लोगों ने पहचाना नहीं। नरेंद्र मोदी आरएसएस को देश को बिल्कुल प्रणाली के कगार पर खड़ा कर दिया। जैसे काला धन वाला बात बोले थे वैसे आमदनी दोगुना कर देंगे 22 में, इसलिए के धोखे में कोई आने वाला नहीं है।
जहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा बजट पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं ज्यादातर विपक्षी दल ने इस बजट को निशाने पर लिया है।
अलग अलग राजनीतिक दल इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बता रहे थे अमर शर्मा। सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन 19,000 करोड़ रुपए कर दिया है और किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मीडिया में अधिकांश विश्लेषक आर्थिक मामलों के जानकार इस बजट को गाँव देहात किसानों के लिए बता रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये बजट वाकई गाँव देहातों के लिए, किसानों के लिए है? कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा आज बीबीसी के स्टूडियो में थे। मैंने उनसे पूछा, आपकी नजर में ये कितना कृषि परक या फिर किसान परक बजट है?
जो फोकस इन्होंने किया है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, पहले तो मैं ये बता दूं स्पष्ट कि वो उनकी मजबूरी थी। इस टाइम हालात देश के ऐसे हैं, स्पेशली ये जानते हुए कि दो इलेक्शन जो हारे हैं, उसके बाद और भी स्टेट्स में जो लोकल इलेक्शंस हैं वो भी हारे हैं, तो उसके बाद उनको मैसेज ये हारा है कि भाई एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये बजट का आपने देखा सारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए रहा,
और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उन्होंने घोषणा की है, और इसके अलावा तमाम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं।
फसल बीमा योजना तो एक उन्होंने कहा भी था शायद कि ये संजीवनी है, उस तरीके का एक पेश किया जा रहा है कि जैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो शायद फसल बीमा से एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकली मैसेज जो देना था वो तो शायद मेरा मानना है कि पार्टी सक्षम हुई है। किसानों को कितना फ़ायदा होगा ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो इसको कैसे देखते हैं।
और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम सरकारें जो पूर्ववर्ती थी वो उनका फोकस खेती पर नहीं होता था, किसानों पर नहीं होता था।
आज मैं जहां भी जा रहा हूं वो ये सवाल मुझे कहा जा रहा है कि खेती के ऊपर बहुत वो फोकस किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो भयंकर आज क्राइसिस है खेती का, वो जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को इकोनॉमिक से ही एड्रेस किया जा सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम सपोर्ट दिखाई गई है, जैसे कि इरिगेशन है गांव में, गैस ऑर्गेनिक फार्मिंग ला, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो पॉइंट है वो है कि किसान की आय जो है वो डबल करने की जो बात कही गई है, और वहां पर जो बजट है वो बिल्कुल साइलेंट है,
लेकिन उसका ढांचा नहीं बताया कि आखिरकार ये कैसे होगा।
पहली बात तो ये है कि किसान ही ऐसी कम्युनिटी क्यों है जिसके लिए आपको 5 साल लगेंगे इनकम डबल करने के, मुझे ये समझ नहीं आता। 7वां वेतन आयोग तो 2 साल पहले ही उसकी बुनियाद से पहले ले आए थे आप, और 7वां वेतन आयोग जैसे आती है, रिपोर्ट आती है, आप उसको इंप्लीमेंट करने को भी तैयार बैठे हो, लेकिन किसानों के लिए आपको 5 साल आप कह रहे हैं डबल होगी इनकम, और किस इनकम की हम बात कर रहे हैं? देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया 2 दिन पहले, उसके अंदर दर्शाया गया है कि 17 राज्यों में जो किसान की खेती से इनकम होती है, चाहे वो घर पे पड़ी हो चाहे बाजार में आई हो, दोनों का आंकलन किया गया है, वो मिलाकर टोटल साल की 20,000 रुपये उसकी इनकम होती है, यानी महीने की 1700 रुपये के आसपास इनकम होती है उसकी। और अगर आप मैं देश को जोड़ लूँ, मैं नेशनल लेवल पे करूँ, तो NSSO का सर्वे जो 2013-2014 का है उसके हिसाब से 3,078 रुपये जो है वो मासिक आय है किसान की खेती से।
सरकार ने इस बजट में एक प्रावधान किया कि 0.5% जो कृषि कल्याण सेस है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेवा कर बढ़ा दिया और आम आदमी को मार दिया, नौकरी पेशा।
पर किसानों के लिए कहां बेहतर किया कि किसान के लिए आपने क्या किया? 1700 रुपये जिसकी इनकम है उसमें क्या उसको क्या फर्क पड़ेगा बताइए जरा मुझे? वो 5 साल इंतजार करे, 3000 रुपये वाला ही 5 साल इंतजार करे? आपको याद होगा 2008-2009 में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था तो सरकार ने इंडस्ट्री को 3,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जो आज तक वापस नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं सरकार 3,00,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज किसानों को देती ताकि उनकी जो 1700 रुपये और 3000 रुपये की जो मैं इनकम बता रहा हूँ औसतन जो है उसके ऊपर उसको कुछ अभी इमीडिएटली उसको लाभ मिलता, अभी मिलता, साल तक मिलता, 2 साल तक मिलता, तब तो कोई बात थी। آپ نے وہاں تو کچھ کیا نہیں, خالی ہیں. جس کو کہتے ہیں نا جو سبز باغ دکھائے گئے تھے, ایک الوژن کے اندر رہے گا کہ میری انکم پانچ سال بعد بڑھے گی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو ملازم, یہ تو دیکھیے یہ جو سروس ٹیکس بڑھایا گیا ہے یہ تو کسی نہ کسی نام سے بڑھاتے رہیں گے.
منموہن سنگھ سرکار ایک جس مدعے پر بات کر رہی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شہروں کی اور آئیں اور وہاں پر اپنے آپ کو سروائیو کریں, بہتر کام کریں. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ سرکار, یہ جو سرکار ہے یہ چاہتی ہے کہ گاؤں کے لوگ گاؤں میں ہی رہیں اور وہاں ترقی کریں؟
نہیں نہیں,
اس نیتی میں بدلاؤ آ گیا.
نہیں نہیں, کس نے کہا آپ کو؟ وہ تو سرکار تو یہ چاہتی ہے کہ یہ گاؤں خالی چھوڑ کر, گاؤں چھوڑ کر یہ لوگ شہروں میں آئیں. اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آج بھی اگر آپ نے سنا ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی سڑکیں بنیں گی, ہم نے جو نئی سڑکیں بنانے کی بات کر رہے ہیں, جو ریل کی بات کر رہے ہیں یا جو نئے انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو گاؤں کے لوگ ہیں کھیتی سے نکل کے ان کو اس میں امپلائمنٹ ملے گی. تو وہ تو کوشش ان کی ہے, بلکہ یہ تو بجٹ میں نہیں ہوتا. لیکن سرکار نے یہ کئی بار کہا ہے کہ بھائی آج ہم 2016 میں ہیں, 2020 تک 30 کروڑ امپلائمنٹ کریٹ کریں گے. سی آئی آئی نے بھی کہا اس بات کو, 30 کروڑ امپلائمنٹ تو آزادی کے بعد نہیں ہوئی, تو ابھی 5 سال میں کیسے ہو جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ گاؤں سے جو لوگ آئیں گے وہ چیپر لیبر چاہیے, تو بیسیکلی اس وہاں سے ڈسپلیس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور شاید اسی لیے 5 سال کا پیریڈ رکھا ہوگا ڈبل کرنے کے لیے انکم.
کرشی معاملوں کے جانکار دیویندر شرما آج بی بی سی اسٹوڈیو میں تھے اور وہ کرشی اور کھیتی کے لحاظ سے اس بجٹ کا وشلیشن کر رہے تھے.
دن بھر شارٹ ویو 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ, یعنی 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر.
بی بی سی ہندی سیوا کی تیسری سبھا دن بھر آپ سن رہے ہیں اور کارکرم میں اب وقت ہے آپ کی چٹھیاں پڑھنے کا.
آپ کی رائے. نمسکار, سویکار کیجیے راجیش جوشی کا.
اور میں ہوں سواتی بخشی.
تو سواتی جی, ہمیشہ کی طرح میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چٹھیاں چاروں طرف پھیلا لی ہیں اسٹوڈیو میں, اور
کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھوں کیا پڑھ پاؤں.
بڑی غور سے آپ کچھ پڑھ رہی ہیں, لگتا ہے ایسا کچھ لکھا ہے جس سے یا تو آپ کا دل بہت خوش ہوا ہے یا بہت دکھی ہوا ہے.
یہ پہلی چٹھی آئی ہے دراصل جسے میں پڑھ رہی ہوں, ونود کمار چھیمپا کی چٹھی ہے, راجہ ولی فضل کا ابوہر پنجاب سے. انہوں نے پہلی بار ہمیں پوسٹ کارڈ ڈالا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سبھی کاریکرموں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, اگر آپ بتا سکیں تو.
ارے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے چٹھی لکھی. بس آپ ایک کام کیجیے, bbchindi.com پر جائیے, ہمارے سبھی کاریکرموں کی وستھت جانکاری, فریکوینسی, سب کچھ وہاں اپلبدھ ہے. بس ایک بار ہماری ویب سائٹ پہ آئیے.
بھونیشور مہنت کا پوسٹ کارڈ آیا ہے تلسی جانجگیر چامپا چھتیس گڑھ سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ برجیش اپادھیائے اور وسط اللہ کا جو پرسارن ہوتا ہے وہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے.
یعنی ڈائری کی بات کر رہے ہیں.
ڈائری کی بات کر رہے ہیں اور ان کی جو ویگ کی شیلی میں,
جی ہاں بالکل بالکل, ہم بھی مرید ہیں.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ 12 فروری کو برجیش جی نے ویلنٹائن ڈے پر جو پرستوتی دی اس میں مونیکا لیونس کی اور بل کلنٹن پرسنگ کا الیک انہیں اچھا نہیں لگا. یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لجا جنک اتیت کو الیکھت کرنا شالینتا نہیں ہے.
جی یہ آپ کا وچار ہے اور آپ کا وچار ہم نے بھونیشور جی پرسارت کر دیا ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ ہندوستان کی روایت ہے کہ بہت ساری چیزیں جسے آپ نے لجا جنک اتیت کہا ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن اب یہ تو اتہاس کا حصہ ہے, اس لیے برجیش نے اس پر اپنی قلم چلائی.
پرویش کمار نے پریا گیا سے ہمیں چٹھی لکھ بھیجی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پتنی ہے وہ پچھلے 10 سال سے ہمارے کاریکرم سنتی ہیں اور وویچنا پھیلا اجیارا وغیرہ کی وجہ سے ان کے گیان میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے.
ان کے ساتھ ساتھ آپ کے گیان میں بھی بڑھوتری ہوئی ہوگی, آپ دونوں کے گیان میں بڑھوتری ہوئی ہوگی اور یہ تو بہت اچھی بات ہے.
لیکن یہ لکھتے ہیں راجیش جی کہ ان کے جو 3 بچے ہیں ان کا بھی ابھی سے بی بی سی کے پرتی گھنشٹھ سمبندھ ہے اور وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر سماچار.
سواتھی یہی وہ چیز ہے, یعنی ہم گوروانوت محسوس کرتے ہیں کہ ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی اور اب تیسری پیڑھی یا چوتھی پیڑھی جتنی بھی کہیں آپ, وہ بھی تیار ہو رہی ہے. بچے ماتا پتا ساتھ بیٹھ کے کاریکرم سن رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے کہاں سے انہوں نے لکھا؟
گیا سے پرویش کمار کی چٹھی ہے.
جی پرویش کمار جی, آپ اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی پتنی کو بھی الگ سے ہمیں چٹھی لکھنی چاہیے, ان کے وچار بھی تو ہم سنیں.
और इनकी शिकायत भी दूर हो गई होगी कि इनका पत्र हम शामिल नहीं करते हैं। ये चिट्ठी है हरिकांत झा की, नरपतगंज अररिया बिहार से। इन्होंने लिखा है, राजेश जी आपके पक्ष में इन्होंने बात लिखी है, आप पर जो एक आरोप लगाती हुई चिट्ठी थी कि बीबीसी का जो मुखौटा है वो हिंदी और आत्मा अंग्रेजी है।
अरे बाप रे, हाँ मुझे याद आ गया जी, हम मुझे श्रोता याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि बीबीसी का असली मुखौटा जो है वो हिंदी है लेकिन आत्मा अंग्रेजी में बसती है।
तो हरिकांत झा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और राजेश जी हिंदी के प्रति समर्पित हैं और उनकी आत्मा जो है वो हिंदी में है, जिस प्रकार से भारत की आत्मा गांवों
में बसती है। जी मैं तो मतलब हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी में ही सोचता हूँ, लिखता हूँ, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंग्रेजी मुझे पसंद है, अंग्रेजी में भी बहुत सारा साहित्य और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। तो किसी भी भाषा से, दरअसल मैं अंग्रेजी को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझता हूँ जितना अरबी, फारसी, उर्दू या फ्रेंच या जापानी को, वैसी हमारी हिंदी मातृभाषा है।
जल्दी से मैं ईमेल्स ले लेती हूँ। आलोक कुमार पुतुल जी को, छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं दुर्गम इलाकों से हम तक खबरें पहुँचाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं अनुराग तिवारी, उन्होंने नई दिल्ली से हमें ईमेल लिखा है और कहते हैं कि उन पर प्रशासनिक अधिकारी ने देशभक्त न होने की जो टिप्पणी की उससे बहुत निराशा महसूस कर रहे हैं।
जी जी, अभी कुछ दिन पहले यह घटना हुई थी, हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आलोक कुमार पुतुल को कार्यक्रम अपना जो असाइनमेंट था वो छोड़ करके रायपुर लौटना पड़ा और उसके बाद उन्होंने पूरी रिपोर्ट की थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई चिट्ठी आपके पास है?
जी हाँ, इसमें ईमेल ही मैं लूंगी। इरशाद अहमद सिद्दीकी का ईमेल है जिन्होंने हमारे प्रस्तुतिकरण के लिए कई सारे हमारे साथियों की तारीफ की है, जिसमें रिहान फजल हैं, आदेश कुमार गुप्त हैं। इसके अलावा एक और ईमेल आशुतोष कुमार पांडे का, इनका कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मधुपाल की बातचीत इन्हें पसंद आई लेकिन लगते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को और ज्यादा घेरा जाना चाहिए।
जी आशुतोष कुमार पांडे हमारे कार्यक्रमों पर लगातार टिप्पणी करते हैं और आपकी बात ये सही है, जब कोई किसी से हम इंटरव्यू करते हैं और वो हमें मौका देता है एक और सवाल करने का तो हमें सवाल एकदम करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब अपने श्रोताओं से इजाजत चाहते हैं, पता नोट कर लीजिए एक बार, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल करना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आप श्रोताओं ने अपनी भेजी चिट्ठियां भी सुन ली और अब कार्यक्रम में हम जरा खेल की खबरें भी सुन लेते हैं। आदेश कुमार गुप्त जी, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आज भी आप शुरुआत क्रिकेट से करने वाले हैं।
जी हाँ बिल्कुल, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है बांग्लादेश में, जहां आज पीरपुर में संयुक्त अरब अमीरात का सामना है पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, उसके बाद थोड़ा सा मौका मिला संयुक्त अरब अमीरात को संभलने का, लेकिन अब फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है क्योंकि 14वें ओवर में संयुक्त अरब अमीरात का स्कोर है 5 विकेट खोकर 72 रन। थोड़ी देर पहले शायमन अन ओवर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं जिनके बल्ले से 46 बेहद शानदार रन निकले और जब तक वो क्रीज पर थे ऐसा लगता था कि शायद संयुक्त अरब अमीरात एक ठीक ठाक स्कोर बना लेगा क्योंकि एक समय संयुक्त अरब अमीरात के 3 विकेट केवल 12 रन पर ही गिर चुके थे। उनके सलामी बल्लेबाज रोहन मुस्तफा के बल्ले से केवल 1 रन निकला और उनके जोड़ीदार मोहम्मद कलीम भी केवल 1 रन बना पाए। उसके बाद एक और झटका उन्हें तब लगा जब मोहम्मद शहजाद भी केवल 5 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि शायबान अनवर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी और पाकिस्तान को बड़ा झटका तब लगा था जब भारत के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, काफ़ी दबाव पाकिस्तान की टीम पर। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने तो ठीक ठाक प्रदर्शन अभी तक किया है, जब बल्लेबाज मैदान में आएंगे क्या करेंगे।
उतना दबाव नहीं होगा जितना हिंदुस्तान के साथ होता है।
जी हाँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव है उसका सामना करने में पाकिस्तानी खिलाड़ी अब थोड़ा सा तनाव और दिक्कत महसूस करते हैं। उधर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम को जर्मनी के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पहले मुकाबले में भी जर्मनी ने भारत को 3-0 से मात दी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का एक बार फिर से वक्त आ गया है।
बीबीसी समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश किया जिसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए कर ढांचे में बदलाव नहीं किया गया और किसानों के लिए विशेष घोषणाएं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर फैसला 2 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा है। कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा है कि सीरिया में शनिवार से लागू हुआ युद्ध विराम के बाद हमलों में कमी आई है, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। फ्रांस के कैले के जंगल के नाम से जाने जाने वाले प्रवासियों के कैंप को तोड़ने का काम जारी है। इस बीच वहां प्रवासियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस का प्रयोग किया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। अब भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।